ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री इंद्र उवाच प्रत्यनीता परम भवता त्रायता ना स्वभागा दैत्याक्रांतं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियत इदं अहो नाथ शुश्रुष्टां ते मुक्ति तेषां न हि बहुमता नरसिंह आपरे किम्। श्री इंद्र उवाच प्रत्यनीता परभवतत्रायत न स्वभागा दैत्यक्रांतं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं क्रियति महो नाथ शुश्रुतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नरसिंहापरे किम्। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। श्रेन्द्र उवाच स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा प्रत्यनीता लौटना है परम हे परम भवता आपके द्वारा त्रायता रक्षा किए जाकर ना हम स्वभागा यज्ञ का अंश दैत्य अक्रांतम दैत्य से पीड़ित हृदय कमलम अपने कमल रूपी हृदय तदगृहम जो आपका वास्तविक धाम है प्रत्यबोधि प्रकाशित किया जा चुका कालग्रस्तम समय द्वारा कवलित कियत नगण्य इदम यह संसार अहो ओह नाथ हे स्वामी शुश्रुषताम सेवा में लगे रहने वालों के लिए ते तुम्हारा मुक्ति भव बंधन से मोक्ष तेषां उनका शुद्ध भक्तों का ना नहीं ही निसंदेह बहुमता बहुत आवश्यक समझा नरसिंह हे नरसिंह देव अपरहे किम अन्य किसी संपत्ति से क्या लाभ। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। राजा इंद्र ने कहा हे परमेश्वर आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग लौटाए हैं। चूंकि असुरराज हिरण्यकश्यपु अत्यंत भयानक था अतः आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा विजित हो चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों से निराशा तथा अंधकार दूर हो गए हैं। हे प्रभु जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं उनके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। वे सब मोक्ष की भी परवाह नहीं करते तो काम अर्थ तथा धर्म के विषय में तो कहा ही क्या जाए। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, देवतागण तथा असुर। यद्यपि देवता भी भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन वे होते हैं भगवान के भक्त, जो वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। हिरण्यकश्यपु के राज्यकाल में प्रत्येक व्यक्ति वैदिक सभ्यता के नियत कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ था, अतएव हिरण्यकश्यपु मार डाला गया तो देवताओं को विशेष प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे हिरण्यकश्यपु द्वारा विचलित रहते थे। चूंकि कलयुग में सरकार असुरों से पूर्ण रहती है, अतएव भक्तों का जीवन संकट में रहता है, वे यज्ञ नहीं कर सकते, अतएव भगवान विष्णु की पूजा के लिए किए जाने वाले यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। देवताओं के हृदयों में सदैव असुरों का भय समाया रहता है, अतएव वे भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाते। देवताओं का कार्य है अपने हृदय में भगवान का सदैव चिंतन करना। भगवान भगवद्गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेऽन्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करते हुए सदैव श्रद्धापूर्वक मुझ में निवास करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठापूर्वक बंध जाता है और सर्वोच्च होता है। देवतागण पूर्ण योगी बनने के लिए सदैव भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन असुरों की उपस्थिति के कारण उनके हृदय सदैव असुरों के कार्यकलापों से भरे रहते हैं। इस तरह उनके हृदय यद्यपि परमेश्वर के वास के निमित्त हैं, किंतु व्यवहारिक रूप से वे शत्रुओं द्वारा आच्छन्न रहते हैं। अतएव जब हिरण्यकश्यपु मर गया तो देवताओं को प्रसन्नता हुई, क्योंकि अब वे भगवान के विषय में आसानी से सोच सकेंगे, अब उन्हें यज्ञ फल प्राप्त हो सकेगा और इस भौतिक जगत में सुखी बन सकेंगे। ओम अज्ञान हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है, और जैसे कि पिछले कुछ समय से हम लोग बहुत ही आकर्षक और भक्तों के द्वारा जो है रिलिशेबल एक कथा का प्रसंग चल रहा है, जिसमें भक्त प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान का विशेष कर ये जो है प्रसंग है, और इतनी रसीली है ये कथा, क्योंकि इसमें भक्तों को सबसे पहली बात उनकी रक्षा की गारंटी मिलती है, जो भगवान भगवद्गीता में वचन देते हैं भक्तों को। तो इस प्रकार इस प्रसंग के द्वारा जो भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, वो देख पाते हैं कि किस प्रकार अगर हम लोग भी भक्त प्रहलाद की तरह भगवान को समर्पित हों, या भगवान प्रहलाद महाराज के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, तो निश्चित रूप से नरसिंह भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। तो जब शीला प्रभुपाद जी भी कभी बाहरी दृष्टि से देखने में बीमार पड़ा करते थे, तो अपने भक्तों को बोलते थे कि आप जो हैं नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर सकते हो मेरे लिए। हम एक टीके जी डायरी पढ़ रहे थे, तो उसमें जब प्रभुपाद अंतिम समय में बहुत बीमार थे और काफ़ी लंबे समय तक कुछ खा पी नहीं रहे थे, तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद आपको हम ले चलते हैं, आपके विश्व के सभी मंदिरों में भ्रमण कराते हैं और आप वहाँ जाएंगे देखेंगे, तो आपको देख के भक्त लोग भी उत्साहित होंगे और आप भी ठीक रिकवर कर जाओगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा है, मुझे ऑलरेडी किसी ने बता रखा है कि मैं कब मेरा जन्म होगा और कब मेरा आखिर समय भी आएगा, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन भी बता रहे थे प्रभुपाद कि इतना समय तक मुझे रहना है और मुझे लगता है कि मेरा आखिरी समय, तो मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने अपने को सदा, लेकिन अपने भक्तों को ये सदैव बोलते थे कि आप नरसिंह भगवान से प्रार्थना कीजिए, जबकि प्रभुपाद जी को पता भी था कि वो मुक्त जीव हैं, कब तक रहेंगे, लेकिन अपने भक्तों को भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना करवा रहे हैं ताकि नरसिंह जी की कृपा हो उनके ऊपर, वो भी प्रार्थना करना सीखें, है ना, किस प्रकार भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो आचार्य लोग जो हैं अगर हमको इस प्रकार प्रेरित भी करते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है क्या, कि उनका फायदा हो। तो यहाँ पर भी भक्त लोगों को एक बहुत बड़ा सुकून प्राप्त होता है जब वो देखते हैं कि किस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज के लिए स्वयं भगवान नरसिंह रूप का अवतार लेकर पहुंच गए। और अब जो प्रसंग चल रहा है, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अब पूरी तरह से मार दिया है और उनके शरीर को पूरी तरह से खोल दिया है और उसमें से जो सामान है जो उनका उस सबको निकाल कर अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो आगे देवतागण बोल रहे हैं कि हाँ आपने ठीक किया। इंद्र भी कह रहे हैं कि इस हिरण्यकश्यप की वजह से एक्चुअली हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया था उनको, है ना, इतनी तपस्या की थी, ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया। अब ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वरदान दे दिया था और उस व्यक्ति ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को सर पे उठा रखा था, है ना, नीचे से पाताल लोक, पितृलोक से लेकर, ऐसा भी नहीं कि खाली पृथ्वी पर आक्रमण मचा रखा था, किसी को नहीं छोड़ा। सिद्ध लोग, जितने भी गंधर्व हैं, जितने भी चारण लोग हैं, जितने भी तरह के लोग थे, उन सब के ऊपर उन्होंने जो है अपना आधिपत्य जमा लिया था। और इतना भय था हिरण्यकश्यपु का, प्रपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसे कि, और इंद्र भी कह रहे हैं कि हम लोग तो, हमारा जो हृदय है वो भगवान का निवास स्थान है, है ना, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, वो जगह उनको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है क्योंकि उस जगह पर वो बहुत पवित्र जगह होती है और सदैव भगवान का चिंतन करने वाले भक्त होते हैं तो भगवान का विश्राम स्थली बन जाती है वो। लेकिन इंद्र कह रहे हैं कि जब से हिरण्यकश्यप को ये ताकत प्राप्त हो गई, इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, तो हमारे हृदय में अब भगवान न रहकर क्या चिंता बनी रहती है, हिरण्यकश्यप के प्रति भय बना रहता है। श्री श्री राधा राधे करमन भगवान की, कृष्ण बलराम की। और भय में तो भक्ति हो ही नहीं पाती, हर समय इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, चिंता बनी रहती है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, और हम देखते भी हैं भारत देश जहां पर भगवान ने हर प्रकार के अवतार लिए, हर प्रकार की सुंदर लीलाएं करी, उस देश में भी इतनी सुंदर लीलाओं के होते हुए भी यहां के लोग भगवान से आकर्षित नहीं है। अगर उन्हें हम भजन करने के लिए या माला करने के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या जरूरत है, दो वक्त की रोटी की जरूरत है, जबकि भगवान ने सबका प्रबंध किया हुआ है, हर जीवात्मा को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति चाहता है कि पहले मैं हर प्रकार से सुरक्षित हो जाऊं, उसके बाद देखूंगा समय मिलेगा तो। जबकि यही लोग जो दो वक्त की रोटी का बहाना लगाते हैं, ये लोग अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने के लिए हॉल में होते हैं महंगी से महंगी टिकट लेके, ये लोग दूसरे हीरो की फिल्म देखने के लिए तैयार रहते हैं, तब इनको ये बहाना याद नहीं आता, है ना। तो ये झूठ है और ये एक किस्म का ढोंग है जो लोग ये सोचते हैं कि पहले पेट की बात हो जाए उसके बाद देखेंगे, तो ये एक बहाना है जो लोग नहीं करना चाहते और आकर्षित होते हैं ऐसे नकली हीरो से जो कि एक ही गुंडे को मारने के लिए भी 50 रीटेक लेते हैं, ऐसे नहीं मारूंगा, पहले प्रैक्टिस करते हैं, मैं ऐसे मारूंगा तो आप नीचे बैठ जाना, और ये करने के लिए भी नकली हीरो की जरूरत पड़ती है, जंप कोई लगाएगा उसी की तरह के कपड़े पहनकर, और जब वो नीचे आएगा तो दिखाएंगे इसने लगाई जंप, है ना, कूदेंगे पलंग से, कैमरा होगा नीचे, कूदेंगे पलंग से और दिखाएंगे कि बिल्डिंग से कूदा है। लेकिन यहां पर नरसिंह भगवान अपने भक्ति रक्षा के लिए खंभा फाड़ कर बाहर निकले। भगवान ने कई तरह से अवतार लिए, वराहदेव तो कहते हैं ब्रह्मा जी की नाक से पैदा हो गए थे, छींके और प्रकट हो गए। तो भगवान ने किस योनि में अवतार नहीं लिया, और हर एक समय कोई ना कोई प्रयोजन रहता था। हम विचार कर रहे थे जब इस श्लोक को पढ़ रहे थे कि किस प्रकार ये मनुष्य जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जितने प्रकार के इस समय यहां पर भक्त लोग इकट्ठे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह जी के आगे, है ना, ये सब लोग नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग, के सारे लोग एकत्रित हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु एक अकेले आदमी ने सबके नाक में दम कर रखा था, और इन लोगों को क्योंकि भजन करना था या अपनी सेवाएं रिचुअल्स पूरे करने होते हैं और भगवान का स्मरण करना होता तो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए चौथे पता नहीं पांचवें स्कंद में देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, और इस भारत भूमि में जन्मे लोगों को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, कहते हैं कि हम लोग तो यहां पर अपनी ड्यूटीज को पूरा करते करते भगवान के चरण कमलों को सदैव भूले रहते हैं। हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो आप हैं, इसलिए हे भगवान अगर हमारा दोबारा जन्म हो तो कहां हो? भारत देश में, ताकि यहां पर जो लोगों को सुविधा प्राप्त है भगवान का नाम लेने का, कीर्तन सुनने का, भजन करने का, ऐसी सुविधा हमें प्राप्त हो सके। और जिन्हें सुविधा प्राप्त है, जब वो लोग देखते होंगे अरे इन्हें तो सुविधा भी प्राप्त है तो भी ये नहीं करते, तो कितना आश्चर्य होता होगा उनको, है ना? सुनने के बाद भी नहीं कर पाते, समझने के बाद भी नहीं करते, माला हाथ में हो तो भी नहीं कर पाते, कई बार तो ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार यहां पर देवता लोग अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ऐसा विकराल रूप उन्होंने भगवान का देखा है। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कुछ ग्लोरिफिकेशन किया भगवान का। इससे पिछले श्लोक में शिव जी ने भी भगवान का जो है बोला कि आप तो भक्तवत्सल हैं, किसी तरह पैसिफाई करना चाहते हैं उनका खूंखार गर्जना से। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, अब शिव जी कह रहे हैं कि आप तो भक्तवत्सल हैं, और अब देखिए अपने राइट साइड में प्रहलाद खड़े हैं, प्रहलाद उनका ध्यान उस तरफ केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को डर लग रहा था भगवान का स्वरूप को देखकर। अब यहां इंद्र ने भी बोलना शुरू किया कि हम लोगों के तो हृदय में आपको निवास करना चाहिए, लेकिन हिरण्यकश्यप की वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे, और हिरण्यकश्यप ने क्या कर रहा, हमारे यज्ञ के सारे भाग को भी ग्रहण कर लिया था, किसी को कुछ नहीं देता था वो, तो आज जो आपने इनको निकाला है तो सारा का सारा हमें वापस कर दिया, आपकी वजह से हम लोग फिर से शांत हो गए, अब हम भजन कर पाएंगे, है ना? तो यहां पर इन विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं में आगे और प्रेयर चलेंगी ये, लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली थी। यहां पर इंद्र एक चीज बात कहते हैं कि आपकी वजह से, आपका दर्शन करने की वजह से, अब आप क्योंकि सामने प्रकट हो गए, तो इसमें एक चीज विशेष ये है कि जब भगवान प्रकट होते हैं किसी के सामने, किसी भी बद्ध जीव के सामने, या तो सबसे पहला फायदा क्या होता है कि भगवान के प्रकट होने से, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, उनका प्रकाश, उनका ज्ञान, उनकी सुंदरता, जैसे ही किसी जीव के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो वो व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है। जिस प्रकार अगर यहां पर लाइट जलाई जाए तो सबके ऊपर प्रकाश आएगा, अंधेरा एकदम दूर भाग जाता है, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो अन्य लोग जो उनके समक्ष हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। पहली बार तो पवित्र लोगों के आगे ही होते हैं, और अगर मान लो कोई नहीं भी है तो उनको भी पवित्र कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि सबसे पहले पवित्र होता है और ज्ञान में आ जाता है, तो उसको रियलाइजेशन अर्थात उसका अनुभव क्या होता है कि उसको पूर्णतः ज्ञान में आ जाता है, वो ये जानता है कि अब मैं कौन हूं, मेरी स्थिति क्या है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, और ये षट ऐश्वर्यपूर्ण भगवान जो है यही परम भगवान है, और इनके सामने हमारी औकात ही क्या है, चाहे बड़े से बड़ा देवता भी क्यों ना हो, जैसे यहां पर ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इंद्र हैं, आदि देवगण भी हैं, ये सारे के सारे भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो भगवान के प्रकट होने से हर व्यक्ति को, चाहे वो अपने किसी भी डिपार्टमेंट का कितना ही बड़ा हेड क्यों ना हो, और कई बार उन डिपार्टमेंट्स की सेवा करते करते उनके अंदर अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भी आ जाता है, लेकिन भगवान के प्रकट होने से उनको अपनी असली हैसियत भी पता चल जाती है कि हम कहां हैं, कितने पानी में हैं, और असली में भगवान कौन है और क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखें, अब ध्रुव महाराज जब उन्होंने प्रार्थनाएं करी, उन्होंने तपस्या करी, तो जब भगवान प्रकट हुए तो उनके भी अश्रु निकलना शुरू हुए, भगवान थोड़ा टच किया उनको, पूर्ण ज्ञान में हो गए, और उन्होंने माफी मांगी, वो बड़े पश्चाताप किया उन्होंने कि मैं जो आपका भजन कर रहा था किस लिए कर रहा था, कि ब्रह्मा जी से भी उच्च पद प्राप्त हो जाए मेरे को, लेकिन वो भी भौतिक था, इसलिए ज्ञानवान होते ही उन्होंने पश्चाताप करना शुरू कर दिया कि हे भगवान मुझे क्षमा करो, मैंने क्या मांग लिया, हीरे की जगह मैंने कांच के टुकड़े मांग लिए। तो भगवान के सामने आते ही जीवात्मा के अंदर ज्ञान आ जाता है, प्रार्थनाएं करनी आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अन्य देवतागण हैं और उनकी भक्ति में जो लोग लगे हैं और कठोर तपस्या कर अगर उनको प्रसन्न कर भी लेते हैं तो वो ज्ञान में नहीं आते, वो तो अपनी भौतिक इच्छाओं के अनुसार वही चीज मांगते हैं जिसके लिए कि वो तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के सामने हिरण्यकश्यपु थे, हिरण्यकश्यपु ने कितनी तपस्या करी, ब्रह्मा जी के सामने आने के बाद, जल छिड़कने के बाद, उसे ठीक करने के बाद भी वो क्या मांगते रहे, मुझे अमर कर दो। आप अगर कोई व्यक्ति शिवजी से प्रार्थना करता है, अपना मांस काट काट के करता है, शिवजी सामने आ जाते हैं, जबकि शिव का मतलब ही मंगलकारी है, लेकिन उनसे भी मांगने पर वही भौतिक इच्छाओं की बात कर रहे हो कि मुझे ये दे दो, मुझे ऐसा वर दो कि मैं किसी पे सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। तथास्तु। अब तथास्तु बोलते ही जैसे ऐश्वर्य बढ़ा, जैसे शक्ति बढ़ी, तो जिसने दिया है उसके पीछे पड़ गए। मतलब अज्ञानता की पराकाष्ठा। उसी प्रकार अन्य देवता लोग भी या अन्य भक्त लोग जो पूजा इत्यादि करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि क्या नुकसान और क्या फायदा है। क्या नुकसान है जब हम लोग अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं अविधि पूर्वकम, और क्या फायदा है जब हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं। कल शाम को एक बच्चा हमारे व्यक्ति लड़का हमारे पास आया, उसने पूछा प्रभु जी भगवान कृष्ण की भक्ति में कुछ समय से कर रहा हूं, लेकिन मैंने सुना भी है और दिखता भी है कि जो भगवान की भक्ति में होता है उसकी इच्छाएं जल्दी पूरी नहीं होती हैं, और वो बहुत ज्यादा ऐश्वर्यवान भी नहीं दिखता है, जबकि अगर हम किसी दूसरे की शरण में जाते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है और उधर भीड़ भी ज्यादा रहती है। तो वही एग्जाम्पल जो हम लोग ज्यादा सुनते हैं, हमने प्रयास किया देने का, कि जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है और घर वालों से बड़ा विरह हो रहा है, लेकिन अब जेल में है, लेकिन अब जेल के अंदर उसको सूखी रोटी, बेकार दाल पानी से युक्त है ना, ऐसा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उसका मन करेगा मैं यहां ना रहूं। लेकिन अचानक अगर सुपरिटेंडेंट की थोड़ी वो चाटुकारिता बोलते हैं चापलूसी कर ले, और थोड़ा सा सेवा करता नजर आ जाए, थोड़ा सा अच्छा बिहेव करे और बोले एप्लीकेशन दे, सर मुझे कल से अगर दाल मखनी मिल जाए, थोड़ा सा नींबू मिल जाए, चटनी मिल जाए, है ना, परांठे मिल जाए, तो अगर मिल जाते हैं उसको, तो अब वो भूल जाता है कि मैं कहां हूं, मैं जेल में हूं, और वो जेल से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो उसी प्रकार अगर हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, और अगर हमारी किसी की शरण में जाकर, जिसकी शरण में गए हैं वो लोग भी भगवान की ही शरण में जाते हैं, उस शरणागत व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो तत्व से नहीं जानते, अविधि पूर्वक हम उनकी शरण में जाते हैं और इच्छा करते कि मुझे ये दे दीजिए। तुमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति उनकी शरण में जाकर कुछ मांग भी लेता है, ले भी लेता है, तो ये उसके बंधन का कारण है और उसका इस संसार में लगाव बनाए रखेगा, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान की शरण में जाने से पहली बात तो भगवान भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों का सदैव अच्छा सोचते हैं, इसलिए वही चीज पूरी करते हैं जो उनके लिए लाभकारी है, और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, उसका क्या है कि व्यक्ति अगर निर्धन भी है, उसकी इच्छाएं पूरी भी नहीं हो रही, और अगर कष्ट भी पा रहा है, तो भी उसमें उसका भला है। जैसे व्यासदेव जी ने पूछा जब नारद जी से कि अपने पिछले जन्म के विषय में बताइए, तो नारद जी ने क्या किया, उनको कथा सुनाई अपने बारे में और कहा मैं मेड सर्वेंट का लड़का था और मेरी माता जी है मेरे को मेरी बड़ी अच्छी परवरिश करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाती थी, अपने मुंह के पास में मुझे बांधना चाहती थी, वो तो मैं कुछ चतुर्मास में आए भक्तों की सेवा कर मुझे कुछ ज्ञान हुआ और उन्होंने शक्ति दी मुझे, तो मुझे ये सब ज्ञान हुआ और मैं देख पा रहा था कि मेरी मां मुझे किस प्रकार अपने मुंह के जाल में सेवा करने का प्रयास कर रही है मेरी। और जब मेरी माता का निर्धन हुआ, कैसे कि एक रात जब वो जा रही थी रात को, तो एक सांप ने उनको डस लिया और मेरी माता का देहांत हो गया, तो कहते मैंने भगवान का धन्यवाद किया और इसमें भगवान की योजना देखी। क्या देखा कि चलो अकेले थे, छोटे बच्चे थे और कोई आस पास को रिश्तेदार वाला सीन नहीं था, तो माता की मृत्यु को भी उन्होंने एक क्या समझा, ये भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान जो हैं उनकी ही योजना से सब कुछ होता है, तो उनको लगा कि यस अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब करो फुल टाइम भक्ति, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने उसको एक बेनेडिक्शन के रूप में लिया। और हम लोग अगर कोई हमसे बिछड़ जाए, कोई चीज हमारी पूरी ना हो, तो जितने दोष मरने हैं हम भगवान पे आके मरते हैं कि खुश तो बहुत होंगे आज तुम, आ गया मैं सीढ़ी चढ़ गया, है ना। तो इस प्रकार जितने ताने मारने आप देखो कि फिल्मों में भी तू तड़ा करके बात करते हैं भगवान के सामने लोग जाके कि तूने ये नहीं किया मेरे साथ, है ना, तू तू करके बात करते हैं ना। चाहे भगवान सुन लेते हैं, समझ लेते, ठीक है तू आया तो मेरे पास ही, चाहे तू करके आया है लेकिन आया तो मेरे पास ही, मेरी शरण में ही। तो हमें जो है इस चीज को समझना पड़ेगा कि भगवान, मतलब श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। कि अगर हमारी, चलो इतना भी बोल दिया गया, चलो अगर इच्छाएं हैं भी, चलो भौतिक इच्छाएं भी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं नहीं है, भगवान का दिया बड़ा कुछ है, और जो लोग मुक्त होना चाहते हैं, इन सारी तरह की इच्छाओं के लिए भी किसके पास आना चाहिए, भगवान के ही शरण में आना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा गया कि जब कोई व्यक्ति इच्छाओं के साथ भी आता है, तो लगातार जब इच्छाओं के साथ आता है, जब इच्छाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, शाम को आए चाहे सुबह आए, तो उस समय कथा चल रही होती है, और कथा में यहां से बैठा हुआ प्रवक्ता भगवत गीता और भागवतम के आधार पर ज्ञान की बात करता है, भक्ति की बात करता है। भगवान के सामने उसकी दृष्टि तो है लेकिन कान तो खुले हुए हैं, कृष्ण को नहीं रोक सकते अपने कानों से अंदर प्रवेश करने में, तो खड़े खड़े भौतिक इच्छाओं के साथ ही लिस्ट निकाल रखी है, वो बोल दी, एक लिस्ट खत्म, दूसरी लिस्ट खत्म, अब क्या करूं, खड़ा तो होना है थोड़ी देर तक, तो कथा अंदर जाने लगती है, कथा अंदर प्रवेश करती है, कृष्ण की सुप्रीमेसी समझते हैं, आत्मा का लक्षण समझते हैं, भगवान से संबंध के विषय में सुनते हैं, रोज आते थे मांगते थे, अब बैठना शुरू कर दिया, अब बैठने लगे हैं, और अब दो चार छह बार बैठने के बाद कुछ समय के बाद माला भी दिखती है उनके गले में, और फिर माला करते नजर आते हैं, और फिर कुछ समय के बाद वही लोग जो बहुत सारी इच्छाओं के साथ आते थे यहां पर सेवा करते नजर आते हैं, उनमें से कुछ लोग यहां पीले वस्त्र पहने नजर आते हैं, उसी में से कुछ लोग लाल वस्त्र में नजर आते हैं। तो इस प्रकार का आकर्षण है भगवान की सेवा में, डरना नहीं, आप सब लोगों की बात नहीं कर रहे, एक्सेप्शन केसेस। तो इस प्रकार भगवान की कथा, भगवान का रूप इतना जो है पवित्र करने वाला है। यहां देवताओं का ऊपर जब हिरण्यकश्यपु ने नाना प्रकार की जो है उनके ऊपर दंडित किया उनको, और अपने यहां पर सेवाएं करवाते थे, अब देखिए इंद्र आदि देव कितनी ऊंची पोस्ट है इनकी, और एक छोटे से प्रहलाद भक्त, अंतर क्या है दोनों में कि जब इनके ऊपर हिरण्यकश्यपु ने अपनी शक्ति का, अपने बल का प्रदर्शन किया, तो इनके हृदय कैसे हो गए, भयभीत हो गए, डर गए ये लोग, और गुलामी स्वीकार कर ली हिरण्यकश्यपु की, और उनके घर का खुद का बेटा प्रहलाद महाराज उसको भी डराने की कोशिश करी, लेकिन वो डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने सही रूप से शरण ग्रहण कर रखी थी, किसकी, भगवान की। तो जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण की है, अभय चरणारविंद रे, जिस व्यक्ति ने अपना मन भगवान के चरण कमलों में लगा रखा है, उनकी शरणागति स्वीकार की हुई है, रक्षति इति विश्वास, ये विश्वास है कि रक्षा करेंगे तो भगवान करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान उपस्थित हैं हर समय। और जिन्हें लगता है कि नहीं, खुद का बल, खुद की शक्ति, मेरी पूजा, मेरा पोस्ट, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, तो ऐसे लोग हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं, और ऐसा इतना सा तो हृदय है ना, उसमें अगर इतनी प्रकार की चीजें रहेंगी तो भगवान कहां से उसके अंदर आएंगे, इतनी मटीरियल डिजायर्स रहेंगी तो कैसे भगवान उसमें प्रवेश करेंगे। तो अगर भगवान को हृदय में प्रवेश कराना है, जैसे कि प्रहलाद महाराज के भगवान जो हम प्रार्थना बोलते हैं उसमें बताते हैं कि हृदय में भी भगवान है नरसिंह भगवान, बाहर भी भगवान है। एक शुद्ध भक्त हर जगह उनका दर्शन करता है, हर जगह उसको भगवान की सुफुरती होती है। लेकिन जो लोग पूर्णतः भगवान को समर्पित नहीं है, जिन्होंने कई और चीजों की भी शरण ले रखी है, अपनी इच्छाओं अपनी आदतों, तो उनको समय लगेगा। नहीं तो भगवान तो तैयार है, जो व्यक्ति भी भगवान को पुकारता है भगवान पहुंच जाते हैं। कितने कितने अवतार लिए भगवान ने, कितने कितने भक्तों की रक्षा के लिए पहुंचे और किस किस चीज से सेटिस्फाई हो गए। द्रौपदी एक बार जब दुर्वासा मुनि आए 10,000 शिष्यों के साथ, अपना उस बर्तन में प्रसाद ले चुकी थी, आखिरी में धो भी लिया था, लेकिन केवल एक चावल का दाना भगवान ने ग्रहण किया और संतुष्ट हो गए। और संतुष्टि का फायदा क्या हुआ कि 10,000 लोगों के पेट भर गए। सुदामा थोड़े से चावल लेकर पहुंचे, भगवान ने वो भी खाया, उससे भी वो संतुष्टि हुई। तो जितने भी अवतारों में भगवान पहुंचे उन सब जगहों पर भगवान ने भक्तों की रक्षा करी, कुछ ना कुछ सुंदर लीलाएं करी। और इन सब लीलाओं का जो भी भगवान करते हैं वो सब लीलाएं बन जाती हैं, मधुर लीलाएं, जो हम जैसी कंडीशन सोल्स के लिए सुनने में और उन्हीं लीलाओं का व्याख्यान करने में हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है, वो हमारा उद्धार का कारण बन जाता है। भगवान की उस तरह की अवतार ली गई घटनाओं को जो यहां पर करते हैं, चाहे भगवान किसी भी अवतार में आए तो कोई ना कोई प्रयोजन होता है। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में भगवान ने एक सेवा की, लोगों के आने वाले लोगों के चरणों को प्रक्षालन किया, तो कितना बड़ा, देखिए ब्रह्मांड के मालिक सारे के सारे उनके दास हैं, लेकिन अपने भक्त के लिए वो सेवा भी स्वीकार करी। अर्जुन के लिए भगवान ने रथ को भी हांका, ऐसी सेवा भी स्वीकार करी। भक्तों से कुछ ना कुछ जो भी उनकी योग्यता थी, सुदामा अगर छिड़वा लाए थे तो वो भी स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर हम लोग अपनी स्थिति को देखें कि हम लोगों को अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, हम लोग पहले चाहते हैं हम हर तरह से कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद हमको सेवा करेंगे, तो इस प्रकार की मानसिकता से व्यक्ति जो है कभी भी वो 100 का आंकड़ा टच नहीं कर पाएगा। जैसे कई बार होता है कि इतनी इच्छाएं पूरी हो जाए, ये सब पूरे हो जाए, उसके बाद मैं भक्ति करूंगा। लेकिन जिन लोगों ने सदैव अपना हृदय भगवान को दे रखा है और पूरी तरह समर्पित हैं, भगवान उनके लिए हर जगह उपस्थित है। तो अगर हम लोग भी प्रहलाद महाराज के दिए गए संदेश का पालन करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, नारद जी के पद चिन्हों पर चलते हैं जिन्होंने हमें सिखाया, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, हमारे और वैष्णवगण जो उसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, और शरणागति भगवान के पवित्र नामों से शुरू होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का जप शुरू करता है तो उसके अंदर सारे के सारे गुण धीरे धीरे आने लगते हैं, तो उसको फिर अलग अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसने शरणागति भगवान के नाम की, भगवान की ले ली है तो निश्चित रूप से आ जाएगी। तो यहां पर इस इंद्र के द्वारा जो स्तुतियां की जा रही हैं, उसके द्वारा हमें यही पता चलता है कि हम लोग भी जो अपने हृदय को विभिन्न प्रकार की जगहों पर जो लगाकर रखते हैं, हमें चाहिए कि वो हम लोग पूर्णतः भगवान के लिए खाली करें। आप खुद देखिए, कहते हैं जो कई बार बोला जाता है, मन ना भयो 10-20 है ना, नहीं तो वो कर लेते, ऐसे गाना है या कुछ कोट है कि एक ही है और वो हमने भगवान को दे रखा है और अब हम लोग दूसरी जगहों पर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ सेंटेंस कई बार लोग यूज करते हैं। उसी प्रकार अगर हमारा एक ही हृदय है और उस एक ही हृदय से हम लोग इस भौतिक संसार की इच्छाओं को भी पूरा करना चाहते हैं और उसमें से हम लोगों ने अपने प्यार का बंटवारा कर रखा है कई कई जगहों पर, तो याद रखिएगा कि इस संसार से बंधन, सॉरी, इस संसार से अटैचमेंट हमारे बंधन का कारण है। और अगर यही अटैचमेंट अगर हम लोग भगवान के प्रति लगाते हैं, भक्तों के प्रति लगाते हैं, या तदीय नाम संरचनम, जितनी भी भगवान से जुड़ी वस्तुएं हैं, हरि नाम, प्रसाद, प्रसाद खैर होती है लोगों की, कथा इत्यादि से हम लोग अगर अपनी अटैचमेंट बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे को शुद्ध करेगा। और जो ये प्रोसेस है भक्ति का, ये बहुत लंबे समय तक नहीं करना पड़ेगा। लंबे समय मतलब श्रील प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चार नियमों का सख्ती से पालन करता है, कम से कम 16 माला करता है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी, तो इस प्रकार अगर कोई नियमों का पालन करता है, श्रवण करता है, एक घंटा रजन करता है, ये जो नियम हमें बताए गए, तो निश्चित रूप से उसके हृदय में इतनी पवित्रता आ जाएगी कि वो भी इस जन्म में या जितना उसका प्रारब्ध के अनुसार लिखा है, वो निश्चित रूप से भगवान के प्रति प्रेम डेवलप कर लेगा। क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो हमारे आचार्य कर चुके हैं, वो हमें दिया है, जिन्होंने इसमें क्या कहते हैं, जिसका रिजल्ट वो ले चुके हैं, देख चुके हैं, वो प्रोसेस हमें दिया है। और अगर हम लोग इस प्रकार भगवान की शरणागति लेते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर और अपने ग्रंथों का की शरण में, हरिनाम की शरण में जाकर, तो निश्चित रूप से हम लोग भी बहुत आसानी से उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे, मुश्किल नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई जिज्ञासा है। देवताओं को ये तो पता नहीं था कि भगवान इस रूप में आने वाले हैं, क्योंकि जब देवताओं के ऊपर हिरण्यकश्यप का प्रभाव था और उनका डर था, तो जब कभी भी देवताओं के ऊपर इस प्रकार कुछ समस्या आती है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ये सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान बताते हैं कि मैं अवतार लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी इस परिस्थिति में भी लोगों को ये नहीं मालूम था कि शायद भगवान इस रूप में आ जाएंगे, डर था। देवताओं को जब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं आने वाला हूं तो इन्फॉर्मेशन भी होती है कि हाँ भगवान आने वाले हैं, लेकिन इस प्रकार का रूप देखकर तो अब जो है, जो स्तुतियां कर रहे हैं वो, तो भगवान का दिव्य रूप देखा उन्होंने। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि प्रश्न क्या था पूछेगा, कि हिरण्यकश्यप को निकाल दिया क्या, ये कह रहे हैं कि भगवान का मतलब स्मरण नहीं होता, वो कह रहे हैं हम चिंतित और भयभीत रहते थे हिरण्यकश्यप की वजह से, लेकिन भयभीत रहकर भी जब प्रार्थना करते थे तो भगवान की ही करते थे। क्योंकि सब देवताओं में और असुरों में यही अंतर है कि जब देवताओं पे कोई संकट या कोई भय आता है तो भगवान की शरण में जाते हैं, उनका चिंतन करते हैं, और देव असुरों पे कोई संकट आता है तो एक दूसरे को याद करते हैं। यहां पर इंद्र बोल रहे हैं कि हमारे हृदय में निराशा तथा अंधकार अब दूर हो गया, क्योंकि अब आप उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति में हमारा अंधकार और भय दूर हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जब हिरण्यकश्यप का वो चल रहा था तो वो अंधकार में ही थे और हिरण्यकश्यप के डर से ही सारे कार्य कर रहे थे, लेकिन स्तुतियां चिंतन करते रहे होंगे, क्योंकि देवताओं का एक लक्षण है भगवान के शरण में जाना। और जब कोई चिंतन कर रहा है, चाहे भय से ही कर रहा है, तो भी समझ लीजिए भगवान उपस्थित है उस समय। ठीक है, और कोई शिल्प